हम लोग पेज 360 पर हैं। आज इस वर्ष का अंतिम सत्र होगा सावित्री का। श्री माँ के व्यक्तित्व का और उनके विकास का वर्णन कर रहे हैं श्री अरविंद, और जैसा कि कविताओं में ही संभव है, इसके साथ साथ श्री अरविंद कई रहस्य, कई सत्य उद्घाटित कर रहे हैं। जब श्री अरविंद से आर्य के प्रथम वर्ष में किसी ने प्रश्न किया था कि सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है इस समय, तो श्री अरविंद उत्तर देते हैं कि मनुष्य को अपने ही अंदर समन्वय लाना है, सिंथेसिस ऑफ मैन हिमसेल्फ, सबसे बड़ी ये आवश्यकता है। और फिर कहते हैं द सिंथेसिस ऑफ रीजन एंड फेथ, ये दो चीजें परस्पर विरोधी होती हैं, या तो कोई तर्क में प्रबल होता है या फिर उसके अंदर श्रद्धा, लेकिन इन दोनों का समन्वय। उसी प्रकार से वो एजुकेशन के एसेज में लिखते हैं कि एक और विज्ञान, तर्क शक्ति इत्यादि का विकास, जिसको लेफ्ट ब्रेन का डेवलपमेंट कहते हैं, दूसरी और राइट ब्रेन, कला, सौंदर्य बोध, साहित्य, इन चीजों का विकास, और इन दोनों का विकास और समन्वय। तो श्री माँ के व्यक्तित्व के वर्णन में हम पहली चीज ये देखते हैं कि दोनों का विकास, इसका वर्णन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आगे माँ श्री अरविंद दोनों सचेत करते हैं कि जब भी अति मानव की परिकल्पना हुई है, मैन टू सुपरमैन, तो एक टेंडेंसी रही है कि सुपरमैन को हम लोग ऐसा समझते हैं कि मनुष्य से कहीं अधिक शक्ति, मनुष्य से कहीं अधिक कैपेसिटी, और नीत्से ने भी इस तरह की कल्पना की एक सुपरमैन की, लेकिन कहीं अधिक शक्ति, कहीं अधिक क्षमताओं वाला सुपरमैन, यदि उसके अंदर एक मूलभूत चीज नहीं बदलेगी और वो है ईगो, तो वो उस धरती के लिए बोझ बन जाएगा, खतरनाक होगा। सीमा कहती है इट विल बी ए टाइटेनिक सुपरमैन, और इस चीज को हम लोग देखते हैं गीता में भी, देवासुरी संपदा में, या रामायण में रावण के चरित्र में। कई बार लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं रावण में क्या बुराई थी, कला में था, माहिर था, वैज्ञानिक भी था, सारी शक्तियों को उसने वश में किया हुआ था, पंडित भी था, लेकिन ये सब कुछ उसके अहंकार के अधीन था। उसकी भक्ति भी अहंकार से प्रेरित थी और उसका अंत अहंकार था, इसीलिए रावण एक टाइटेनिक सुपरमैनहुड का मार्ग खोलता है, और यह मार्ग मनुष्य के लिए भयानक है। यही चीज हम लोग महाभारत में देखते हैं। शकुनी युधिष्ठिर से कहीं अधिक चतुर है, युधिष्ठिर कोई मैच नहीं है उसके सामने। अगर दोनों एग्जामिनेशन में बैठे होते हार्वर्ड के, तो शकुनी पक्का युधिष्ठिर को बीट कर देता। दुर्योधन भीम से कम नहीं है, कर्ण भी अर्जुन से कुछ कम नहीं है, एक से एक उस समय क्षमताओं और कैपेसिटी से भरे हुए लोग हैं, किंतु एक मूलभूत अंतर है। कौरव और कौरवों के साथ जो खड़े हैं वो एक टाइटेनिक सुपरमैनहुड का, एक राक्षसी असुरी सुपरमैनहुड का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनका विनाश होना है। हर बार जब मनुष्य के अंदर एक नई संभावना खुलती है तो संसार में नई शक्तियां आती हैं, और उस समय ऐसा संभव होता है कि मनुष्य या तो उन शक्तियों को ईगो के लिए यूज करे और एक टाइटन, एक राक्षसी असुरी विकास की ओर बढ़ जाए जो विनाश करेगा खुद का भी, धरती का भी, या उन शक्तियों द्वारा वो दैविक रूप में विकास करे। और माताजी श्री अरविंद ने बार 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 इसका सचेत किया, और इसको जितनी बार हम लोग याद रखें उतना कम है। एक जगह माँ कहती हैं कि मैंने देखा उसको, उस असुर ने जिसने श्री अरविंद का रूप धारण कर लिया है, और वह एक श्री अरविंद के नाम पर एक धर्म बनाना चाहता है, और वो एक ऐसा धर्म होगा जिसमें सब लोग क्षमताओं से भरे होंगे लेकिन क्रूर होंगे, अपने से जो कम है उनसे पूजा करवाएंगे या उनको पदाक्रांत करेंगे, हम विशेष हैं इस भाव को लेकर जीवन में जिएंगे। लेकिन सबको पता होना चाहिए, माँ आगे सचेत करती हैं, सबको पता होना चाहिए कि श्री अरविंद का यह सत्य नहीं है। आगे बहुत सुंदर शब्दों में बताती हैं, श्री अरविंद का सत्य करुणा से भरा है, श्री अरविंद करुणा से भरे हैं इसलिए महान है। द लॉर्ड इज ग्रेट, ही इज ग्रेट एंड कॉम्पैशनेट, दया से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, इसलिए वे दिव्य हैं। और ये हम लोग माँ के जीवन में देखते हैं कि माँ यहाँ की राज राजेश्वरी, मतलब यहाँ की क्या भुवनेश्वरी, ये भी शब्द उनके लिए कम है। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या रोल किया था? माता जी होना ये चाहिए था कि सब माँ की सेवा करें कायदे से, होता क्या था यहाँ, माँ सबका ध्यान रखती थी, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े वृद्ध साधक का, सब चीज का ध्यान, खाना क्या खाएंगे, बालकनी दर्शन में दे रही हैं स्पिरिचुअल सब कुछ, उच्चतम चेतना। साथ में वो देखती हैं कि एक व्यक्ति है वहाँ, वो माँ की दृष्टि देखिए, उस समय उन्हें इस व्यक्ति ने मुझे खुद बताया, डोजो मास्टर जो थे, अब उनकी शरीर पूरा हो गया, जोसेफ, तो बताते कि माँ ने पवित्र धा के थ्रू मैसेज भिजवाया मुझे कि मैंने जोसेफ को देखा, बहुत दुर्बल लग रहा था, उसको रोज एक अंडा खिलाओ। बालकनी दर्शन से भगवान ने क्या नहीं देखा, ऐसा कौन कर सकता है? एक कमरे में पार्टीशन, फ्रिज का, पुराने फ्रिज का पार्टीशन डाल के माँ विश्राम, सारे दिन सबको देना, ये होता है सुपरमैन। सुपरमैन वो नहीं होता है जो कहता है हाँ अब मैं सुपरमैन हूं, अब सब मेरी सेवा करेंगे। श्री अरविंद एक जगह एक एफोरिज्म में लिखते हैं कि यदि तुम सबका सेवक स्वयं को नहीं बना सकते हो तो तुम फिर किस तरह के सुपरमैन हो। आगे और एक व्यंगात्मक रूप से लिखते हैं, लोग कहते हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं लेकिन मनुष्य को भी प्रेम नहीं कर सकते, फिर तुम किससे प्रेम करते हो? दे से दैट दे लव गॉड बट कैनॉट लव इवन मैन, हु आर यू इन लव विद देन? एक व्यंग है कि स्वयं को प्रेम करते हैं कि स्पष्ट नहीं कहते। सो ये सुपरमैन कैसा होगा वास्तव में, अब इसकी देखिए, श्री माँ के एक और इंटेलेक्चुअल साइड का डेवलपमेंट, माँ बहुत इंटेलेक्चुअली डेवलप थी। एक बार नलिदा को जब ये अभिमान होने लगा कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, नलिदा स्वयं लिखते हैं, तो माँ एक बार उनसे कहती हैं, नलिनी एक समय था जब मैं भी बहुत अधिक ये फिलॉसफीज और इंटेलेक्ट जानती थी लेकिन मैंने ये सब त्याग दिया। ये उनको संकेत था, नलिदा कहते हैं माँ ने मुझे संकेत दिया कि देखो इसका अभिमान मत रखना। लेकिन माँ उन सब चीज़ों में पारंगत थी, इंटेंस फिलॉसफीज पॉइंटेड अर्थ टू हेवन। अब एक टाइटन भी बहुत फिलॉसफी, असुर भी पंडित होता है, वो भी बहुत दर्शन शास्त्री होता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है, लेकिन उसकी फिलॉसफी कैसी होती है, पॉइंटेड हेवन टू अर्थ, बड़ी से बड़ी चीज को वो निम्न बना देता है, ये असुर की पहचान है। राम को देखेगा कहेगा बंदरों भालू के साथ दोस्त, ढंग से कपड़े नहीं पहनने आते, पांव में जूता नहीं है, इसको लोग बोलते हैं भगवान है, भगवान तो मैं हूं, ये रावण की फिलॉसफी है। राम की फिलॉसफी क्या है, सबके साथ गणिका जामिल ब्याद गीद गजाद, सबके साथ मिल जाते हैं सहज भाव से, इसलिए वे दिव्य हैं। तो ये फिलॉसफी कैसी है, कैसा है माँ का दर्शन, पॉइंटेड अर्थ टू हेवन, धरती पे जो कुछ है उसको उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। इंटेंस फिलॉसफीज पॉइंटेड अर्थ टू हेवन, धरती के ऊपर जो कुछ है वो एक संकेत है स्वर्ग की ओर आरोहण का। और ऑन फाउंडेशंस ब्रॉड एज कॉस्मिक स्पेस अप्रेस्ड द अर्थ माइंड टू सुपर ह्यूमन हाइट्स। ये दर्शन मनुष्य के मन को स्वर्ग की ओर, दिव्यता की ओर, उत्कृष्टता की ओर, उदात्तता की ओर उठाता है, क्योंकि ये दर्शन एक सीमित नैरो दर्शन नहीं है, वो सृष्टि जैसा विशाल है। ये दर्शन माता जी का दर्शन है। ओवर पासिंग लाइन्स दैट प्लीज द आउटवर्ड आईज। अब कला कैसी है उनकी, ये तो उन्होंने दर्शन का बता दिया कि माता जी इंटेलेक्चुअल भी बहुत थी, लेकिन उनकी दार्शनिकता वैसी नहीं थी जैसे क्रूड जो। ओवर पासिंग लाइन्स दैट प्लीज द आउटवर्ड आईज बट हाइड द साइट ऑफ दैट विच लिव्स विद इन। स्कल्पचर एंड पेंटिंग कॉन्सेंट्रेटेड सेंस अपॉन एन इनर विजन्स मोशनलेस वर्ज रिवील्ड ए फिगर ऑफ द इनविजिबल। कला कैसी होनी चाहिए? दो प्रकार की कला है, एक तो जो हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आई, जिसका एक बड़ा विकृत रूप है, टैटू बना देते हैं पीठ के ऊपर, भगवान की टैटू बना दिया कंधे पर, ये एक विकृति है, ऐसी विचित्र सी कला। एक कला है जो चीजों के पीछे छिपे सत्य को प्रकट करती, यानी आप उसको देखोगे तो लगेगा कि ये फॉर्म नहीं है। फोटोग्राफी और पेंटिंग में यही अंतर है, फोटोग्राफी चीजों के फॉर्म को कैप्चर करती है। बहुत रेयर है कि फोटोग्राफी किसी की आत्मा को कैप्चर कर सके, बहुत कठिन है फोटोग्राफी में, क्योंकि आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं है, आप तो केवल जैसा है वो कैप्चर करोगे। लेकिन पेंटिंग में यह संभव है कि जो छिपा हुआ है उसको आप बाहर निकाल लो, और क्या छिपा है, अदृश्य रूप में जो छिपा है हर चीज के अंदर, जो सौंदर्य में। अब वो पेंटिंग कैसे करती है इसका भी माने यहां हिंट दे दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड सेंस साधना है ये। जब हमारी सभी इंद्रियां कंसेंट्रेट होती हैं ऑल ब्यूटीफुल को एडोर करती हुई किसी भी चीज को के ऊपर, वो एक कुर्सी हो सकती है, एक जग हो सकता है, एक मनुष्य हो सकता है, एक घोड़ा हो सकता है, एक वृक्ष हो सकता है, जब कंसेंट्रेट करती है तो एक समय आता है जब वो उसके पीछे जाकर उसकी आत्मा का स्पर्श पाती है, स्कल्पचर, और तब वो उसको गढ़ती है। उसको कहते हैं दिव्य रूप में मूर्ति को गढ़ना या दिव्य कला। स्कल्पचर एंड पेंटिंग कॉन्सेंट्रेटेड सेंस अपॉन एन इनर विजन्स मोशनलेस वर्ड्स रिवील्ड ए फिगर ऑफ द इनविजिबल अनवेल्ड ऑल नेचर्स मीनिंग इन ए फॉर्म और कॉट इन टू ए बॉडी द डिवाइन। रूप और आकृति का एक अर्थ है, एक दिव्य अर्थ है, घोड़ा है, पुष्प है, उसको एक तो है हम लोग फॉर्म बना देते हैं, लेकिन पुष्प क्या है, माता जी कहती हैं कि ये वेजिटेबल जगत की भगवान को एक ऑफरिंग है। घोड़ा क्या है, शक्ति का प्रतीक है। गाय क्या है, प्रकाश का प्रतीक है। अब उसको रूप देना, रूप और आकृति के बीच में उसको लाना, ये अद्भुत बात है कला की। ये हम लोग देखते हैं पुराने समय के स्कल्पचर में, ये दृष्टि चाहिए उसके लिए। अजंता एलोरा में इस तरह के इवन नग्न स्कल्पचर्स हैं, और कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि ओ भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष ने हर चीज को उत्कृष्टता तक ले जाने की क्षमता दिखाई है, उन स्कल्पचर्स में भी ऑब्सिनिटी नहीं है। ये कैसे उन्होंने किया, क्योंकि उनके हृदय साफ थे, और जिसके हृदय साफ नहीं होते हैं वो सब कुछ है लेकिन ऑब्सिनिटी ढूंढता है। ऐसी भी पेंटिंग्स हैं, शेरविंद बताते हैं, राजा रवि वर्मा उधर नंदलाल बोस, आप कंपेयर करेंगे आप देखेंगे कि एक और सेम पेंटिंग है, स्कल्पचर है, उसमें एक दिव्यता प्रकट हो रही है, दूसरी ओर उसमें एक ऑब्सिनिटी, एक क्रूडिटी प्रकट हो रही है। यही अंतर होता है एक सृजनात्मक कलाकार का। द आर्किटेक्चर ऑफ द इन्फिनिट डिस्कवर्ड हियर, रिकवर्ड हियर इट्स इनवर्ड म्यूजिंग शेप्स, डिस्कवर्ड हियर इट्स इनवर्ड म्यूजिंग शेप्स कैप्चर्ड इन टू वाइड ब्रेथ्स ऑफ सोरिंग स्टोन। आर्किटेक्चर ऑफ द इन्फिनिट, इसका उदाहरण है गोलकुंड, मातृ मंदिर। अभी एक पुस्तक भी आई है पोपो की, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पता नहीं आप मिले हैं कि नहीं, वेरी नाइस मैन, स्वीट मैन। उनकी एक पुस्तक आई, आज मैं देख रहा था एडवर्टाइजमेंट, वो आर्किटेक्चर इन ऑरोविल। उसमें क्या विशेषता है, कैसे प्रकाश आता है, कहाँ से उसके अंदर जाके आपको क्या अनुभव होता है, अनुभूति होती है गोलकुंड के अंदर प्रवेश करके, ये होती आर्किटेक्चर ऑफ द इन्फिनिट। ये नहीं कि घर बना लिया उसमें बड़ा दिखे ऐसा दिखे, नहीं, उसके अंदर एक भाव होता है, आत्मा होती है, वो प्रकट होता है, आर्किटेक्चर ऑफ द इन्फिनिट। हर क्षेत्र में सीमा की व्यक्तित्व के द्वारा श्री अरविंद बता रहे हैं, हर क्षेत्र में हमें कैसा डेवलपमेंट विकसित होना चाहिए। म्यूजिक, संगीत, कैसा संगीत होना चाहिए, माता जी का संगीत ना ईस्टर्न है ना वेस्टर्न है, परंतु उसमें डूब जाए व्यक्ति तो डूबता चला जाए। म्यूजिक ब्रॉट डाउन सेलेस्टियल यर्निंग्स, song held the merged heart absorbed in rapturous depths, linking the human with the cosmic cry. Srima Gayan bahut achha gaati bhi thi. Linking manushya ki vani ko cosmic cry. Cosmic cry hum logo ne kal video mein dekhi thi. Ki pure srishti mein ek cry hai. Ek dhwani hai. Wo dhwani kya hai? Wo ek or se adi swar hai. Dusri or uske andar uski khoj hai. और हम लोगों ने कल कितना सुंदर सूर्य की ध्वनि ओंकार से मिलती हुई, ब्रह्मांड की ध्वनि, उसके अंदर एक प्यास है, एक हल्की सी मानो एक बांसुरी की भी बहुत हल्की एक कहीं बैकग्राउंड में एक स्वर, कॉस्मिक क्राई, उसको संगीत में उतारना, वो किसी लय छंद ताल में नहीं बन सकती. उसके लिए तो लय छंद ताल के परे जाना होता है. लोग प्रयास करते हैं सावित्री का कौन सा मीटर है, अनंत का मीटर है. इस गंगा और यमुना को आप किस गति में बांधेंगे. तो इस प्रकार की म्यूजिक, लिंकिंग द ह्यूमन विद द कॉस्मिक क्राई, इसीलिए श्रीमा के म्यूजिक में ये, और इसीलिए श्रीमा के म्यूजिक को सडनली बंद नहीं करना चाहिए. अगर उसको चलाएं तो फिर छोटे पीसेस भी हैं, 5 मिनट के पीस हैं, वो ले लें अगर छोटा मेडिटेशन करना है, या उसको धीरे 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 करके एकदम लो पे पर चलने दे, उसके स्पंदन आने चाहिए, क्योंकि वो एक मूवमेंट है पूरा चेतना के अंदर, उसको एब्रप्टली नहीं स्टॉप किया जा सकता है. लिंकिंग द ह्यूमन विद द कॉस्मिक क्राई, द वर्ल्ड इंटरप्रेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द डांस, उसी प्रकार से नृत्य मोल्डेड आइडिया एंड मूड टू ए रिदमिक स्वे. नृत्य में ये नहीं भरतनाट्यम है, बाउल संगीत है, ये इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट ए टेक्निक, इट्स नॉट कथक का प्रदर्शन. जब सहाना दी एक नृत्य नाटिका में राधा का उनको रोल करना था, बड़ा प्रयास करती हैं, उसकी तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि वो प्रैक्टिस कर रही थी, एक साधक ने कहा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, रोज छप 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 नाचते हैं लोग, डिस्टर्ब करते हैं. तो उन्होंने माँ श्री अरविंद को बोला मैं क्या करूं, श्री अरविंद ने कहा प्रैक्टिस करते रहो, वो मेडिटेशन करना सीख जाएगा. भगवान का तरीका. फिर भी उनको नहीं आ रहा था, बहुत प्रयास किया. उन्होंने माँ को कहा माँ मैं क्या करूं, मैं कुछ मिसिंग है. माँ कहती एक तो तुम जब नृत्य कर रही हो खुद को भूल नहीं पा रही हो, आत्म केंद्रित हो. मालूम है राधा कैसी थी, फिर माँ बताती मालूम है राधा कैसी थी, राधा के अंदर क्या भाव था. नहीं माँ नहीं मालूम है, राधा तो सब कुछ अपना कृष्ण में भूल चुकी थी. तब माँ ने सहाना दी को प्रेयर दी, राधास प्रेयर. राधास प्रेयर की उत्पत्ति का ये बैकग्राउंड है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है. फिर माँ कहती इस भाव से तुम नृत्य करो, दैट इज द ओरिजिन ऑफ राधास प्रेयर. डांस के अंदर कैसा, ये नहीं कि कौन अप्रिशिएट कर रहा है, सामने कौन बैठा है, पीछे कौन है, अच्छा मेरा डांस कैसा रहा, दैट इज नॉट डांस, वो तो परफॉर्मेंस हो गया. परफॉर्मेंस और पूजा में यही अंतर है, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए किया जाता है, पूजा तो खोने के लिए की जाती है. मोल्डेड आइडिया एंड मूड टू ए रिदमिक स्वे एंड पोस्चर क्राफ्ट माइन्यूट इन सटल लाइन्स इटरनाइज्ड ए स्विफ्ट मोमेंट्स मेमरी. अब देखिए ये बहुत सारे ओडिसी में भरतनाट्यम में बहुत सारे मुद्राएं होती हैं. अब क्या करते हैं लोग, टेक्निक के द्वारा आँख हाथ पाँव मुद्राओं के द्वारा भाव. अब भाव हो भी नहीं अंदर, मुद्राएं सही हैं परफेक्ट, दैट इज नॉट डांस. पहले कैसे ये मुद्राएं निकली होंगी, स्वतः ही निकली होंगी. पहले कैसे ये आसन प्रकट हुए होंगे, स्वतः ही प्रकट हुए होंगे. जब आध्यात्मिक चेतना अंदर कार्य करती है तो अपने आप हाथ की आंख की गति सब कुछ उसके अधीन हो जाती है. वे मुद्राएं वास्तव में सही मायने में पूजाएं हैं. तो यहां पर उसका वर्णन है पोश्चर, अनेकों भाव हैं नृत्य में, पोश्चर मुद्राएं. Crafts minute in subtle lines, eternized a swift moment's memory, और शोड इन ए कार्विंग्स स्वीप ए कप्स डिजाइन द अंडरलाइंग पैटर्न्स ऑफ द अनसीन। कार्विंग एक बड़ी सुंदर एक ऑरोविल में भी हुई थी प्रदर्शनी, कार्विंग ने कैसे की थी, एक प्रकार की वुड कार्विंग होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग वुड कार्विंग होती है। उसमें जो पेड़ अब वेस्ट हो रहा है तो उसमें वो, मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ी सुंदर इंटरेस्टिंग है वो, एक उसका आर्ट का नाम है, जापानीज ने शुरू की है। तो वो देखता उसको, बड़ी देर मेडिटेट करता है, मेडिटेट करने के बाद वो फिर उसमें काम करता है। तो वो उसे पूछा कि तुम क्या बनाते हो, कैसे, कहते नहीं मुझे वृक्ष बताता है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं टेबल बनूंगा या घोड़ा बनूंगा, मैं क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा, कैसी आकृति होगी, उसके अंदर उसकी आत्मा मुझे सब बताती है। और तब मैं उसको, केवल मेरा कुछ काम नहीं है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं और उस पर काम करता हूं, और बड़ी सुंदर सुंदर चीजें ऑरोविल में भी अब इस प्रकार की कला आ गई है। दैट इज द रियल आर्ट। और शोड इन ए कार्विंग स्वीप ए कप्स डिजाइन, इवन एक प्याले में द अंडरलाइंग पैटर्न्स ऑफ द अनसीन, एक ऐसी चीज को प्रकट करना जो हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देती। फिर कविताएं, माँ कविताएं भी लिखती थी, बहुत कम लोग जानते हैं, माताजी ने स्वयं इसको कहा है। कैसे लिखती थी, शरीर की नींद में उन्होंने क्या किया, मास्टर किया हुआ था, वो उठती थी और कविताएं लिखती थी, और कविताएं लिख करके छिपा देती थी ड्रॉअर के अंदर। एक बार उनका ड्रॉअर थोड़ा खुला छूट गया, उनकी माँ आई, माताजी की फिजिकल मदर, उन्होंने देखा, देखा ये, वो तो बिल्कुल हार्ड कोर मेटीरियलिस्ट थी, क्या मेरी बेटी कविताएं लिख रही है, दिमाग उसका ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा। माताजी ने कहा, उस दिन के बाद मैं बहुत सचेत हो गई कि कभी दोबारा मैं कविताएं लिखूं लेकिन कोई देखे ना, वो सब छूट गई, ये सब माने किया हुआ है। ये कविताएं कैसे उतरती थी, कविताएं कैसी होती हैं, पोएम्स इन लार्जनेस कास्ट लाइक मूविंग वर्ल्ड्स एंड मीटर सर्जिंग विद द ओशियंस वॉइस, जैसे समुद्र की अंदर एक गति ताल छंद होता है, उसी प्रकार से कवि के हृदय में कविता का जन्म होता है। कविताएं इस तरह नहीं लिखी जाती कि ये मीटर में सीखूं, ट्रेनिंग हो, उसके बाद लिखूं, वो कविता नहीं होती। कविता तो ऐसे जन्म लेती है जैसे समुद्र के अंदर संगीत जन्म लेता है। समुद्र को किसी ने नहीं सिखाया है सारे गामा, लेकिन अगर आप समुद्र की ध्वनि को सुनेंगे, वेव्स को, थोड़ी देर लगता है आह कितना अद्भुत संगीत है ये, आप किसी उसको उसमें नहीं बांध सकते। ट्रांसलेटेड बाई ग्रैंडियोर्स लॉक्ड इन नेचर्स हार्ट, जो प्रकृति के गहराई में छिपा हुआ छंद है, ताल है, उसको प्रकट करना। बट थ्रोन नाउ इन टू ए क्राउडेड ग्लोरी ऑफ स्पीच, माँ टॉक्स भी देती थी, एक जगह माँ बताती हैं सारे विधाएं उन्होंने प्रकट की हैं धरती के ऊपर जो कालांतर में मनुष्य करेगा। कैसे देती थी माँ, एक जगह लिखती हैं, तुम्हारा प्रकाश मेरे मुख से प्रकट हुआ, टॉक नहीं है वो, तुम्हारा प्रकाश, और वो अपने आप जो स्पीच है वो मोल्ड हो जाती है, क्या कहना है, कैसे कहना है, उसकी कैसी गति होगी, उसमें भी एक रिद्म है। शेरविंद की जो प्रोज राइटिंग्स भी हैं उसमें एक पोइट्री है, अद्भुत है। सिंथेसिस ऑफ योग अगर कोई पढ़े तो लगता है ये कविता है कि ये गद्य है। बट थ्रोन नाउ इन टू ए क्राउडेड ग्लोरी ऑफ स्पीच द ब्यूटी एंड सबलिमिटी ऑफ हर फॉर्म्स द पैशन ऑफ हर मोमेंट्स एंड हर मूड्स लिफ्टिंग द ह्यूमन वर्ड नियरर टू द गॉड्स। वाक साधना, शब्द के द्वारा भगवान तक जाना, ये भी एक साधना है। गीता में इसका संकेत है वाणी की तपस्या, सरल नहीं है। वाणी की तपस्या में ये करना होता है कि एक भी शब्द ऐसा ना हो जो डिग्रेडिंग हो, गाली तो बहुत दूर की बात है, कोई भी शब्द क्रोध में, आवेश में जो दूसरे को क्षति पहुंचाए, इन सब शब्दों को ना केवल वोकेबलरी से, चेतना से दूर कर देना होता है। फिर ये वाणी धीरे 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 तप के द्वारा, कृपा द्वारा बनती हुई, उसके अंदर भगवान के स्पंदनों का स्पर्श प्रकट हो सकता है और तब वो वाणी दिव्य होती है, वाणी के द्वारा भगवान की ओर, लिफ्टिंग द ह्यूमन वर्ड नियरर टू द गॉड्स। वाक मैंस आईज कुड लुक इन टू द इनर रेल्म्स, हिज स्क्रूटनी डिस्कवर्ड नंबर्स लॉ एंड ऑर्गेनाइज्ड द मोशंस ऑफ द स्टार्स, मैप्ड आउट द विजिबल फैशनिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब सभी विधाएं देखिए, मैंस आईज, माता जी किस देह में आई हैं? मनुष्य के देह में, किंतु ये आंखें क्या देख रही हैं? इनविजिबल वर्ल्ड जो छिपा हुआ है। मैंस आईज कुड लुक इन टू द इनर रेल्म्स, हिज स्क्रूटनी डिस्कवर्ड नंबर्स लॉ। ये भी एक अद्भुत बात है कि देखिए भारतवर्ष में कितने सारे नंबर हैं जो सेक्रेट माने गए हैं, 1, 3, 4, 0, 7, 108, बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। और अगर आप इनको देखें तो पूरी सृष्टि इनके पैटर्न्स पे बनी है, इनकी अपनी एक मैजिक है नंबर्स का। जैसे 9 नंबर, आप किसी भी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, षटकोण, अष्टकोण, उनके कोण को जोड़ लीजिए, सब अंत में 9 पर आएंगे। हम लोग जब छोटे थे तो पहाड़ा जो टेबिल ऐसे सीखते थे, आजकल तो ऐसे 9 × 1 क्या पता नहीं ऐसे सिखाते हैं। हम लोग गीत के साथ टेबल सीखते थे, बड़ा सुंदर गीत था, 9 का टेबल ऐसे सीखते थे, गुणनिया आएंगे 9 के 9, 9 का 9, 9 × 1, 9, इस तरह से। माने सॉन्ग है उसमें, आप गीत है, आई कांट सिंग बट आई फील टेम्प्टेड टू सिंग। उसी प्रकार से 15 का पहाड़ा, ये तो मुझे याद है जो गीत के द्वारा, तो ये एक अलग विधा है। और इसमें एडवांटेज क्या था, आप लेफ्ट और राइट ब्रेन को जोड़ देते हो, क्योंकि नंबर्स का जो कंसेप्ट है वो लेफ्ट ब्रेन के साथ है, गीत और संगीत राइट ब्रेन के साथ है। इट्स ए बेटर वे टू टीच मैथमेटिक्स रादर देन प्योरली द क्रूड वे। एनीवेज वो एक अलग चीज़ है। ये विधाएं, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, एक पूरी ये विधा है कि नंबर के द्वारा जो लोग ऑब्जर्व करते हैं बताते हैं। हिज स्क्रूटनी डिस्कवर्ड नंबर्स लॉ एंड ऑर्गेनाइज्ड द मोशंस ऑफ द स्टार्स। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मिली हुई विधाएं हैं। नंबर्स के द्वारा आप कई चीजें आप देखेंगे, आपके जीवन में एक नंबर का प्ले, श्री अरविंद के जीवन में, अमल किरण एक जगह लिखते हैं 12 और 6 का बहुत प्ले है उनके जीवन में, माता जी के जीवन में भी, तो ये नंबर्स का एक प्ले होता है, तो आप उसको देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले हर किसी के जीवन में होता है, बर्थ डेट से कनेक्टेड होता है। फिर आप देखेंगे कौन से घर में रह रहे हैं उसके नंबर, ये सब कहीं ना कहीं हार्मोनाइज करते हैं। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी मैप्ड आउट द विजिबल फैशनिंग ऑफ द वर्ल्ड, क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ हिज थॉट्स और मेड ए थ्योराइज डायग्राम ऑफ माइंड एंड लाइफ। इस बेसिस पर मनुष्य ने अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग विधाएं प्रकट की हैं। हस्तरेखा, माता जी, जब किसी ने एक बार कहा, माँ मेरे, किसी ने बताया है हस्तरेखा विशेषज्ञ ने कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, तो माता जी कहा, देखूं देखूं देखूं, बहुत देर देखती रही, फिर कहती हैं चलो वो सब कैंसिल हो गया। माता जी के स्वयं के हाथ में, माता जी का जीवन अगर उनके हाथ में था तो बहुत छोटा था अगर हस्तरेखा के हिसाब से, तो वो ना केवल पढ़ना जानती थी, वे उसको कैंसिल करना जानती थी, उस डेस्टिनी को। इन सब चीजों को सावित्री ने अपने अंदर सहज स्वाभाविक रूप से धारण किया हुआ था। अब देखिए ये लाइन आ रही है, दीज थिंग्स शी टुक इन एज अ नेचर्स फूड। सब कुछ सावित्री ने अपने अंदर आत्मसात किया था, ये अनेकों अनेकों विधाएं, बट दीज अलोन कुड फिल नॉट हर वाइट सेल्फ। यही अंतर होता है, मनुष्य कहता हाँ हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम साहित्यकार हैं, हम म्यूजिशियन हैं, हम कवि हैं, हम पेंटर हैं, ये तो प्रकृति की सीमाएं हैं। आप कितना भी ऊपर ले जाओ, लेकिन मनुष्य के अंदर जो आत्मा की प्यास है, इससे नहीं बुझ सकती। ये चाहिए, ये विकास चाहिए। पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये विकास आवश्यक है। श्री अरविंद के योग में प्रकृति और आत्मा दोनों का विकास चाहिए। इसलिए सावित्री इन सब चीज़ों को विकसित करती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं हैं, ये उनकी पहचान नहीं है। ए ह्यूमन सीकिंग लिमिटेड बाय इट्स गेन्स, टू हर दे सीम द ग्रेट एंड अर्ली स्टेप्स। ये एक आवश्यक कदम है उस आरोहण की ओर। हेजार्डस ऑफ ए यंग डिस्कवरिंग स्पिरिट विच सॉ नॉट येट बाई इट्स ओन नेटिव लाइट। ये एक इनडायरेक्ट ग्लिम्सेस हैं ये विधाएं, किंतु वास्तव में ये कदम है ऊपर चढ़ने के लिए। हम लोग अगर यहां रुक गए और अपनी पहचान इससे जोड़ दी, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। Which saw not yet by its own native light, it mapped the universe with testing knocks. It tapped the universe with testing knocks, or stressed to find truth, mind's divining rod. There was a growing out in numberless sights. There was a growing out to numberless sights, but not the widest seeing of the soul. कई दिशाओं में, कई विधाओं में डेवलप होके भी अभी कोई चीज स्टिल मिसिंग है। ये भी आवश्यक है, किंतु ये काफी नहीं है। कोई और चीज है जो आकर इन सबको एक फुलनेस देगी, टच देगी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। रावण के अंदर सभी विधाएं हैं, किंतु आत्मतत्व का विकास नहीं है। यही अंतर है। कर्ण भी पारंगत है धनुर्विद्या में, और ना जाने इवन एज ए ह्यूमन बींग नोबिल है, लेकिन समर्पण नहीं है। दुर्योधन बलशाली है, वीर है, वो शकुनी की तरह नहीं था, वीर था। मरूंगा या मारूंगा, भीम चुनता किसको है लड़ने के लिए? भीम उस समय भी उसको यह है कि मरूंगा या मारूंगा, ये नहीं बोलता है कि मैं अच्छा सहदेव से लड़ लूं। नहीं, वीर है, बलवान है, शक्तिशाली है, लेकिन आत्मतत्व का अभाव है। यही एक अंतर है। नॉट येट द वास्ट डिरेक्ट इमीडिएट टच, नॉट येट द आर्ट एंड विजडम ऑफ द गॉड्स। यही दुर्गा जी का एक अद्भुत, देखिए एक स्त्री के अंदर लोग कल्पना क्या करते हैं, जो कमजोर हो, नाजुक हो। लेकिन भारतवर्ष ने कैसी स्त्री की कल्पना की, जो स्ट्रांग है और सुंदर है और ज्ञानवान है। कमजोर, नाजुक, डिपेंडेंट, कि कोई आएगा मेरा रक्षा करेगा, भारतवर्ष ने उस स्त्री को पीक पर नहीं देखा। उसने किस स्त्री को सम्मान दिया? दुर्गा को। उस किसी की सहायता नहीं चाहिए। महिषासुर है, मैं तेरा भी मर्दन कर सकती हूं, लेकिन कोई भक्त है तो उसको ज्ञान दे के रास्ता दिखा सकती हूं, रक्षा दे सकती हूं, प्रेम दे सकती हूं। प्रेमदायिनी, शक्तिदायिनी, ज्ञानदायिनी मां, ये है। सीता कमजोर नहीं है। कौन कमजोर कहेगा जो रावण के यहां एक महीने रहती हैं, लेकिन कभी उनकी ना श्रद्धा टूटती है, ना शक्ति टूटती है, ना संबल टूटता है। कोई साधारण व्यक्ति होता तो कहता, अच्छा ठीक है, रावण ही अच्छा है, कौन जाने कब आएंगे मेरे पति, आएंगे कि नहीं आएंगे, कम से कम ये त्रिलोक का राजा है, मुझे मुख्य रानी बना रहा है। नहीं। और जब रावण अत्याचार करने के लिए आता है तो कहती, रावण तुम ऐसा नहीं समझना, मैं तो राम आएंगे, पूरी रामायण ये सब रचना, लेकिन अगर तू सोचता है मैं कमजोर असहाय हूं, हाँ और कौन क्या हो तुम, तो एक तृण उठाकर सामने रख देती हैं। कहती, तुम मुझे कमजोर या असहाय मत समझना, हिम्मत है तो इस तृण को क्रॉस करके दिखा। कौन कह सकता है जो अति तेजस्वी और सत्य को धारण किए हैं? ये है पराकाष्ठा। ये हमारे यहां परिकल्पना हुई है आत्मतत्व की, शक्ति का, तेज का। ए बाउंडलेस नॉलेज ग्रेटर देन मैन्स थॉट्स। अब सावित्री के वर्णन, बाउंडलेस नॉलेज जहां मनुष्य के विचार नहीं पहुंच सकते, ए हैप्पीनेस टू हाई फॉर हार्ट एंड सेंस, वह आनंद जिसको मनुष्य का हृदय, मनुष्य की सेंसेस, इंद्रियां धारण नहीं कर सकती। लॉक्ड इन द वर्ल्ड एंड यर्निंग फॉर रिलीज शी फेल्ट इन हर वेटिंग एज येट फॉर फॉर्म, अपने अंदर ये वो अनुभव करती थी, जो सृष्टि के अंदर बंद है, जो ज्ञान, जो आनंद जिसको मनुष्य धारण नहीं कर पाते, वह अपने अंदर वो महसूस करती थी, वेटिंग फॉर रिलीज। इट आस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स अराउंड विच टू ग्रो एंड नेचर स्ट्रॉन्ग टू बेयर विदाउट रिकॉइल द स्प्लेंडर ऑफ हर नेटिव रॉयल्टी। क्या वो चाहती थी? ऐसे लोग, ऐसे प्रकृति, ऐसे यंत्र, ऐसे पात्र जिनके अंदर, जिनके द्वारा वो ये सब अभिव्यक्त कर सके। स्ट्रॉन्ग, जब माने कई लोगों के चित्र बनाए हैं, स्केचेस, अधिकांश लोगों का चेहरे का स्केच, प्रणब दा का माने फिस्ट का स्केच बनाया है, उनकी मुट्ठी का, और श्री अरविंद को वो ले गई और दिखाती हैं, कहती हैं, सी लुक, लुक एट इट, फॉर्मिडेबल पावर, फॉर्मिडेबल पावर। फिर वो श्री अरविंद देखते हैं और श्री अरविंद तो पावर्स के भी पावर, कहते हैं इतने ही कहते हैं, दैट इज द पावर। ये पावर सॉलिड। माँ कहती है एक जगह, मैं वैसी स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं करती जो केवल स्पिरिचुअलाइज, इथीरियलाइज करती है। आई वॉन्ट सॉलिडिटी जो सक्षम हो, जो हजार मुसीबतों के सामने, पहाड़ टूट रहे हो, सुनामी आ रही है, लेकिन खड़ा होकर कहे, माँ 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 मेरी तुझ में श्रद्धा है, जो ना भूत से डरे, ना पिशाच से डरे, ना राक्षस से, ना आसुर से, ना गंधर्व से, जो देवता उनको लालच दे तो कहे, नहीं मुझे तो केवल भगवान चाहिए। ये सॉलिड होता है नेचर, नहीं जो बह जाए, इधर इस करंट में चला गया, उधर से आया तो उस करंट में चला गया। तो वो ऐसे नेचर्स को ढूंढ रही थी जो योग्य पात्र हों, एंड नेचर्स स्ट्रॉन्ग। भगवान के स्पर्श को सहन करना बहुत कठिन होता है, टू बेयर विदाउट रिकॉइल, बेयर नहीं कर पाते हैं लोग, कौन रह पाएगा काली के पास? देवता लोग भाग जाते हैं कि अरे अब अगला तो इंद्र कहते हैं मेरा मुंडाने वाला है। कैनॉट बेयर, केवल जो साहसी होते हैं, समर्पित होते हैं, वे कहते हैं, आ मां ले ले मेरा भी मुंड। द स्प्लेंडर ऑफ हर नेटिव रॉयल्टी, हर ग्रेटनेस एंड हर स्वीटनेस एंड हर ब्लिस, है ना दुर्गा का वर्णन, ग्रेटनेस एंड हर स्वीटनेस एंड हर ब्लिस, महिमामयी, करुणामयी, माधुर्यमयी, सौंदर्यमयी, ज्ञानमयी, शक्तिमयी, सब कुछ एक साथ। हर माइट टू पजेस एंड हर वास्ट पावर टू लव, बड़े से बड़े असुरों को जो दमन कर दें, पजेस पूरी सृष्टि को वो अपने अंदर ले पाए, लेकिन लव, ऐसा प्रेम कि जिसमें वो सब कुछ अपना दे दें और दे के भी सीमा नहीं, ऐसा प्यार जिनके अंदर हो। हर माइट टू पजेस एंड हर वास्ट पावर टू लव, अर्थ मेड ए स्टेपिंग स्टोन टू कॉन्कर हेवन, द सोल सॉ बियॉन्ड हेवन्स लिमिटिंग बाउंड्रीज, मेट ए ग्रेट लाइट फ्रॉम द अनोएबल एंड ड्रीम्ड ऑफ ए ट्रांसेंडेंट एक्शंस स्फीयर। मनुष्य की सब सीमाओं को वो पार कर जाती हैं और क्या देख रही हैं? मानव सीमा के परे वह सत्य, वह प्रेम, वह प्रकाश जो धरती पर अवतरित होने वाला है, उसको मैं उतारूं और ऐसे सक्षम यंत्र हों जो उस प्रकाश को, शक्ति को वहन कर सकें, ये मां ढूंढ रही हैं। तो हम लोग यहां रुकेंगे एक लंबे ब्रेक के लिए और फिर अगले वर्ष आगे कंटिन्यू करेंगे।